الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ذکر کا لفظ قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایک معنی تو اس کا ہے قرآن مجید، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس نصیحت نامے کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ہم ہی ذمہ دار ہیں. تو یہاں ذکر سے ذکر کا معنی نصیحت نامہ. ذکر کا لفظ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے بھی استعمال ہوا. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اور اگر وہ مجھے اپنے کسی محفل میں بندہ یاد کرتا ہے تو میں اس بندے کو اس سے بہتر یعنی فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اور اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس بندے کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. تو یہاں ذکر سے مراد یاد ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر میری یاد کی خاطر سے. تو نماز کا بھی اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. آج ذکر کا جو معنی ہم اس محفل میں لیں گے اس کا مطلب اللہ کی یاد ہوگا. اب اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان زبان سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اور دوسرا یہ کہ انسان اپنے دل میں اللہ کو یاد کرے. زبان سے یاد کرنے کو لسانی ذکر کہتے ہیں، اور دل میں یاد کرنے کو قلبی ذکر کہتے ہیں. لسانی ذکر تو یہ ہوا کہ انسان کی زبان سے خیر کی باتیں نکلیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفار، درود شریف، یہ جتنے کلمات زبان سے نکلتے ہیں یہ سب ذکر میں داخل ہیں. تو اس کو لسانی ذکر کہا جاتا ہے. اور جب انسان اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اس کو قلبی ذکر کہا جاتا ہے. حدیث پاک میں قلبی ذکر کے لیے ذکر سری کا بھی لفظ آیا ہے، ذکر خفی کا بھی لفظ آیا ہے، ذکر خامل کا بھی لفظ آیا ہے. تو یہ تمام الفاظ قلبی ذکر کے لیے حدیث پاک میں استعمال ہوئے ہیں. अगर आप गौर करें तो किसी की याद हमेशा इंसान के दिल में होती है, जुबान से तो उसका इजहार होता है। आप गौर कीजिए कि जब कोई माँ अपने बच्चे को खत लिखवाए जो दूर गया हुआ हो, तो हमेशा ये लिखवाती है कि बेटा मेरा दिल तुझे बहुत याद करता है। उसने कभी ये नहीं लिखा कि बेटा मेरी जुबान तुझे बहुत याद करती है। कभी किसी दोस्त ने दूसरे दोस्त को लिखा कि मेरी जुबान तुझे बहुत याद करती है? हमेशा यही बात कही जाएगी, भाई मेरा दिल तुझे बहुत याद करता है। तो यहां से मालूम हुआ कि याद का मकाम इंसान का दिल है, जुबान से तो उसका इजहार होता है, असल याद तो दिल में होती है। वो जिनका इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोहरे खामोशी दिलों में याद करते हैं। तो जब इंसान का दिल में सच्ची मोहब्बत होती है तो जुबान तो खामोश होती है और दिल में याद होती है। कुरान मजीद में भी जिक्र की यही दो किस्में बताई गई। चुनाचे कुरान मजीद की एक आयत है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वज़कुर रब्बका फी नफ्सिक, जिक्र कर अपने रब का अपने नफ्स में, अपने दिल में, अपनी सोच में, अपने ध्यान में, अई फी कल्बिक। मुफस्सरीन ने लिखा कि यहां मकसद ये कि तू अपने दिल में अल्लाह को याद कर। तो दिल में अल्लाह ताला को कैसे याद करें, आगे उसकी तफसील बताई गई। तो जर्रम वखीफा, गिर गिराते हुए और बहुत खफी अंदाज से, किसी को पता ही ना चले, ऐसे इंसान बैठ के याद करे। चुनाची तफसीर मारिफुल कुरान में हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह वो लिखते हैं कि कुरान पाक के इन अल्फाज से जिक्र कल्बी का सबूत मिलता है। और इसके बाद फरमाया, व दून अल जहरे मिन अल कौल, और तुम आहिस्ता मुनासिब आवाज से भी जिक्र कर सकते हो, तो ये जिक्र लिसानी का सबूत मिलता है। मगर वो फरमाते हैं कि जिक्र कल्बी का तज़किरा चूंकि पहले किया गया, इसलिए जिक्र कल्बी को जिक्र लिसानी के ऊपर फजीलत हासिल है। हदीस पाक में आता है कि जिस जिक्र को फरिश्ते सुनते हैं और जिस जिक्र को फरिश्ते नहीं सुनते, यानी जिक्र लिसानी को वो सुनते हैं जिक्र कल्बी को नहीं सुनते। तो हदीस पाक में फरमाया कि जिस जिक्र को फरिश्ते नहीं सुनते उस जिक्र से जिसको वो सुन लेते हैं 70 गुना ज्यादा फजीलत रखता है। तो गोया दिल में अल्लाह को याद रखना इसकी 70 गुना फजीलत ज्यादा है। ये जिक्र कल्बी इंसान लेटे बैठे चलते फिरते हर वक्त कर सकता है। देखिए, जुबान को तो और बहुत सारे काम करने हैं। मिसाल के तौर पे एक आदमी खाना खा रहा है तो वो खाने के दौरान जबान से कैसे अल्लाह का जिक्र कर सकता है? वो खाना खाएगा या फिर जबान से जिक्र करेगा? लेकिन आप गौर करें कि खाना खाने के दौरान दिल तो सोचता रहता है ना, दिल में ख्यालात तो कताना बाना तो चलता रहता है ना। अच्छा, इसी तरह एक आदमी लेक्चर दे रहा है, अब वो लेक्चर के दौरान जबान से कैसे जिक्र कर सकता है? जबान तो मसरूफ है। एक आदमी अपना कारोबार कर रहा है, अब वो उस कारोबार के दौरान अपनी जुबान से जिक्र कैसे कर सकता है? उसको तो ग्राहक से बात करनी है, उसको तो सौदा तय करना है, उसको तो भाव उसके साथ तय करना है, लिहाजा वो तो नहीं जुबान से जिक्र कर सकता। और दूसरी तरफ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे वो नेक बंदे जिनको खरीदो फरोख्त मेरी याद से गाफिल नहीं करती, तो अब खरीदो फरोख्त मेरी याद से गाफिल नहीं करती ये भी शर्त लगा दी, और जुबान से जिक्र कर भी नहीं सकते उस वक्त में खरीदो फरोख्त के दौरान। कोई बंदा कपड़े बेचता हो, फर्ज करो, अब उसका एक कस्टमर उसके पास आए और कहे जी कि आपने ये कपड़ा बेचना है, ये कहे अल्लाह 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 अल्लाह, वो कह जनाब मैं कपड़ा खरीदने के लिए आया हूँ, मुझे आप बताइए कपड़ा आपने बेचना है या नहीं। ये कह अल्लाह 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 अल्लाह। वो कह जनाब आप इसका रेट कितना लेंगे। ये कह अल्लाह 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 कि मुझे तो ये कहा गया कि मैं खरीदो फरोख के दौरान अल्लाह के जिक्र के गाफिल नहीं हूँ। अब ये अल्लाह अल्लाह ही हर जवाब के हर सवाल के जवाब में कहता रहे तो वो तो फिर कहेगा ना जल्ला 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 कि तू बेवकूफ आदमी है, तू कैसे काम करेगा बैठ के ये अल्लाह अल्लाह जो कर रहा है यहाँ। तो इसका ये मतलब हुआ कि हम उस वक्त जुबान से ये नहीं कर सकते, हाँ दिल में अल्लाह को याद करें जुबान से अगरचे बहुत है कर रहे हैं, तो दिल अल्लाह ताला से गाफिल ना हो, ये असल चीज है। जुबानी जिक्र का लोगों को पता चल सकता है लेकिन कल्बी जिक्र का किसी को पता नहीं चल सकता जब तक के जिक्र करने वाला खुद ना बताए। अच्छा किसी को क्या पता कि कौन क्या सोच रहा है, कोई बता सकता है, पता नहीं चल सकता। दिल दरिया समुद्रों ढूंढे कौन दिला दिया जाने हूँ। दिल तो दरिया ऐसे हैं कि ये समुन्द्र से भी ज्यादा गहरे हैं, तो दिलों की तो कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। तो इसलिए जिक्र कल्बी से मुराद दिल से अल्लाह ताला को याद करना। अब ये जो दिल में अल्लाह ताला को याद करना है यही नबी अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी। चुनाचे हदीस पाक में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम कल्बी तौर पर हर वक्त अल्लाह ताला की याद में रहा करते। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह ताला फी कुल्ले अहयानिही कि नबी अलैहिस्सलाम हर लम्हे अल्लाह को याद करते थे। अब वो जो हर लम्हे अल्लाह को याद करते थे तो वो कल्बी जिक्र है। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तनामु आईना वला यनामु कल्बी मेरी आंखें तो सो जाती हैं मेरा दिल नहीं सोता। तो दिल जिक्र करता रहता है, इस जिक्र कल्बी का करना हमारे लिए भी जरूरी है। जबान के तो और भी काम है, दिल का क्या काम। तो दिल लेटे बैठे हर वक्त अल्लाह को याद कर सकते हैं। अब इसकी जरा मिसाल समझ लें ताकि ये बात समझनी आसान हो जाए। दो भाई हैं, उन पर कोई मुकदमा बन गया। अब उनमें से बड़ा भाई कहता है कि भाई मैं तो जाता हूँ अदालत में, आप पीछे घर के काम काज संभालना। तो बड़ा भाई तो चला गया, छोटा भाई अब अपने दुकान पे जा रहा है तो रास्ते में गाड़ी में यही सोच रहा है कि पता नहीं आज मुकदमे का फैसला क्या होता है, आज पता नहीं हमारे जो विटनेस हैं वो पहुंचते हैं वक्त पर या नहीं, आज जज साहब क्या कहते हैं, वकील क्या कहते हैं, आज हमारे मुखालिफ क्या कहते हैं। अब वो जा तो रहा है अपनी दुकान पर लेकिन पूरे रास्ते में ये स्टोरी उसके दिमाग में चल रही है, फर्ज करो अब अगर वो ये ऑब्जेक्शन करें तो हमारा वकील ये जवाब दे, अगर वो ये पूछें तो ये जवाब दे, वो बैठ के सारा ताना बाना बुन रहा है। हत्ता के शाम को जब ये वापस आया तो आते ही अपने भाई से मिलकर पूछने लगा कि बताओ क्या फैसला हुआ, मैं तो सारे दिन आप ही को याद करता रहा। अब जब इसने ये बात की ना कि मैं तो सारे दिन आप ही को याद करता रहा, इसका क्या मतलब था कि उसने भाई का नाम अब्दुल्ला 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 करता रहा, नहीं, इसका मतलब ये था कि उसके दिल में भाई का ध्यान रहा। जिस तरह इस बंदे के दिल में सारा दिन अपने भाई का ध्यान रहा, इसी तरह मोमिन के दिल में सारा दिन अल्लाह का ध्यान रहता है। अब इसमें कौन सी बात है जो समझ में नहीं आती। हम तो हैरान होते हैं, पूछते हैं जी कि ये जिक्र कल्बी क्या चीज होती है। भाई अगर आप इस नेमत से महरूम हैं और आपको नहीं मिली तो इसका क्या मतलब है, इस नेमत के वजूद से इनकार कर दो, ये कहां का इंसाफ हुआ। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तो ते मन अगफलना कल्बहु अन जिक्रिना, तुम उसकी इताअत न करो जिसके दिल को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया। ये कुरान मजीद में जिक्र कल्बी का सबूत है कि नहीं, कोई इनकार कर सकता है इसका। माँ ने बेटा नहीं जना जो कह सके कि कुरान पाक में कल्बी जिक्र का तज़करा नहीं है। वला तो ते मन अगफलना कल्बहु अन जिक्रिना, अब ये तो अल्फाज उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं, तो हर उर्दू समझने वाला भी इस आयत का तर्जुमा समझ सकता है। वला तुते मन अगफलना कल्बहु अन ज़िक्रिना, आप उसकी बात ही ना मानिए जिसके दिल को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया। तो मालूम हुआ कि दिल जिक्र से गाफिल भी हो जाता है और दिल जाकिर शागिल भी बनता है। इसलिए इस जिक्र कल्बी को हासिल करने के लिए हर वक्त तरगीब दी जाती है, क्योंकि जिक्र कल्बी हासिल हो जाए तो लेटे बैठे खाते पीते हर वक्त इंसान अल्लाह ताला के ध्यान में रहता है, फिर गुनाहों से बचना आसान हो जाता है, फिर इंसान खिलाफ शरा कोई काम नहीं करता क्योंकि दिल में हर वक्त अल्लाह की याद अल्लाह का ध्यान होता है। इस जिक्र कल्बी को हासिल करने के लिए मशायख मेहनत बताते हैं कि कैसे मेहनत की जाए तो जिक्र कल्बी नसीब। और ये भी ध्यान में रखिए कि जबान तो जिक्र करेगी तो थक भी जाएगी थोड़ी देर बाद, दिल तो नहीं थकता, दिल तो जितना याद करे अपने महबूब को उतना ज्यादा सुकून पाता है। इसलिए कहने वाले ने कहा, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। तो अल्लाह ताला को याद करने से दिल को तसल्ली मिल जाती है, सुकून मिल जाता है, इत्मीनान नसीब हो जाता है, इसको तमानियत कल्ब कहते हैं। आज दुनिया के लोग दुनिया की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए मेडिटेशन करते फिरते हैं। अब मेडिटेशन वालों से जरा पूछें कि ये क्या करते हैं, तो ये अपने क्लब में जाएंगे और आंखें बंद करके ये अपने जिस्म के किसी एक हिस्से पर गौर करना शुरू कर देंगे। इतनी तवज्जो किसी एक नुक्ते पर मरकूज कर लेंगे। अब अपनी तवज्जो किसी एक नुक्ते पर मरकूज कर लेने से थोड़ी देर में दिमाग के अंदर जो स्ट्रेस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमें सुकून मिल गया। तो ये कितनी अधूरी सी बात है। चुनाचे 1990 में इस आजिज को स्वीडन जाने का मौका मिला, वहां पर एक कोर्स करवाया गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के नाम से। दुनिया के 27 मुल्कों के इंजीनियर से वहां चुने हुए, हर मुल्क से एक एक या दो दो इंजीनियर लिए गए थे। मुझे अपने मुल्क से, पूरे मुल्क से मैं अकेला सिलेक्ट हुआ था, तो वहां जाने का मौका मिला। उन्होंने हमें 40 दिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में बताया। आखिरी दिन उन्होंने एक लेक्चर रखा जिसका नाम था ह्यूमन स्ट्रेसेस। उन्होंने कहा आज के बाद यह है कि आज के मैनेजर जो होते हैं बहुत सारे काम वो चाहते हैं वक्त पर करें नहीं होते, बहुत सारे काम वो चाहते हैं कि ये ना हो वो हो जाते हैं, तो उनको स्ट्रेस मिलता है, उनका दिमाग अंडर प्रेशर रहता है। उन्होंने कहा कि अगर ये स्ट्रेस जो है अपने दिमाग से खत्म ना किया जाए तो इसका इंसान की सेहत पे असर होता है, इसको कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। उन्होंने साइंस की जुबान में ये बात कह दी, हमारे लोग पंजाबी में कहते हैं कि गम इंसान को बूढ़ा कर देते हैं। लोग कहते हैं ना कि गम इंसान को बूढ़ा कर देते हैं, तो वाकई अगर दिमाग पे बोझ हो तो इंसान की सेहत पे असर होता है उसका। खैर, उन्होंने भी इसको साइंस की जुबान में समझाया कि जो दिमाग के अंदर परेशानियां हो तो इंसान की सेहत पे असर होता है। उसके बाद वो कहने लगे जी कि हम आपको तरीका बताएं कि किस तरीके से आप जहन की परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। सारे लोग बड़े खुश हुए कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जरूर हमें समझाएं। तो उन्होंने अपने मुल्क के कोई 5-6 माहिर नफ्सियात साइकार्टिस्ट बुलाए हुए थे, वो ये लेक्चर दे रहे थे। तो उनमें से एक ने कहा कि अच्छा हम आपको एक एक्सरसाइज बताते हैं आप अभी करना, अब उसने क्या किया, उसने कहा अच्छा जी दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दिया, लाइट बुझा दो, लाइट बुझा दी गई। हमें कहने लगे कि आंखों को बंद कर लो, हमने आंखों को बंद कर लिया। कहने लगे सर को झुका लो, हमने सर झुका लिया। अब जब सर झुका लिया, खामोश बैठ गए, तो उसने कहा कि फॉरगेट एवरीथिंग, टेक ऑल द थॉट्स फ्रॉम योर माइंड, फील रिलैक्स्ड। अब ये दो तीन फिक्रे बार 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 वो बोलता रहा, फॉरगेट एवरीथिंग, फील रिलैक्स्ड। और जैसे वो कहता रहा, हम वैसे ही फारिग, जहन फारिग, यानी ख्यालात से फारिग होकर अपने जहन को लेकर बैठ गए थोड़ी देर। कुछ देर भाई इसी तरह बैठे बैठे बैठे, अचानक वो कहता है अच्छा एक्सरसाइज हो गई, 5 मिनट के बाद कहता है। अब उसने लाइटें भी ऑन करवा दी, दरवाजा भी खुलवा दिया, लोगों ने सर भी उठा लिया, आंखें खोल ली। अब उस एक्सरसाइज करवाने वाले ने सब लोगों से पूछा कि बताओ जी आपको सुकून मिला? तो एक इंडोनेशिया का नौजवान था, वो कहने लगा कि आई एम फीलिंग नेचुरल हाई। कहने फिर एक जमैका की लड़की थी, इंजीनियर थी, तो वो कहने लगी आई एम फीलिंग प्लेजेंट, आई एम फीलिंग प्लेजेंट। तो इस तरह हर बंदे ने अपने अपने कमेंट्स दिए। अल्लाह ताला की शान के उसने मुझसे भी पूछ लिया कि आपके तासुरात क्या हैं। तो मैंने कहा जी बात यह है कि जो कुछ आपने अभी करवाया है ये तो हम पहले ही करते हैं, रोज ही करते हैं। जब उसको कहा ना कि ये तो हम पहले ही करते हैं, रोज ही करते हैं, तो मेरी तरफ उसने देखा, कहते आर यू मुस्लिम, यूं करके कहते आर यू मुस्लिम। मैंने कहा यस आई एम, मैं हूं। तो उसके बाद उसने एक फिकरा बोला, जो फिकरा मैं आपको मिन्नो अम सुना रहा हूं, 100% उसी के अल्फाज में। कहते हैं यू लर्न इट बाई विजडम 1500 ईयर अगो एंड वी हैव जस्ट लर्न इट बाई साइंस। तुमने इस चीज को वही के जरिए 1500 साल पहले समझ लिया था, हमने इस चीज को साइंस के जरिए अभी समझा है। अब बताइए कि काफिर लोग इस जिक्र के जो खूबियां हैं उनको साइंस के जरिए अब समझ के अपनाना शुरू कर दिया है। फिर मैंने उन्हें कहा जी आपने तो आधी मशक करवाई है कि हर चीज को भूल जाओ भूल जाओ। हम तो इसके बाद कहते हैं कि हर ख्याल जहन से निकाल दो और अल्लाह का ख्याल दिल में जमा लो। हम तो अगला आधा हिस्सा भी बताते हैं, तो अभी तो आप आधे रास्ते में पहुंचे हैं। तो कहने लगा कि मे भी फ्यूचर में हम भी ऐसा ही करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग इस तरह बैठ कर अल्लाह ताला का जिक्र कर लेते हैं, रब्बे करीम फिर उनकी परेशानियों को दूर फरमा देते हैं, जहन को सुकून मिल जाता है। इसलिए हम पाबंदी के साथ सुबह और शाम बैठकर अल्लाह का जिक्र करें, मुराकबा करें। तरीका मुराकबे का यही है कि सर को झुका ले और अल्लाह ताला की याद में बैठ जाए। आज तो हालत यह है कि दुनिया का फायदा नजर आए तो लोग दीन का काम भी करना शुरू कर देते हैं। उनको असल चाहिए दुनिया का फायदा, तो दुनिया का फायदा नजर आता हो तो दीन का काम शुरू कर देते हैं। फातिमा जना मेडिकल कॉलेज लाहौर में है, उसमें कोई 20-25 बच्चियां बैठ हुई एक महफिल में। खैर किसी दूसरी महफिल में उनमें से एक ने कहा कि जी जो बच्चियां बैठ हुई हैं माशाल्लाह उनकी जिंदगी बदल गई, नेक बन गई। एक बच्ची के बारे में बताया कि ये तो बहुत ही बदल गई है और बड़ी लंबी लंबी नमाजें पढ़ती है। तो हमें भी हैरानी हुई कि भाई माशाल्लाह खूब असर हुआ, एक लंबी लंबी नमाजें पढ़ती है। लेकिन उसके जो कल्बी आलात थे वो कोई इतने नजर नहीं आ रहे थे कि भाई कोई बड़े खुशू वाली ये लड़की है और ऐसे अल्लाह की मोहब्बत में लंबी लंबी नमाजें पढ़ती है। तो फिर मैंने उससे पर्दे के पीछे बैठी थी पूछा कि भाई आपके ये लंबी लंबी नमाजें पढ़ने का असल मकसद क्या है, मुझे सही बात बताएं। तो कहने लगी जी ये लड़कियां जो हैं जरा एक तरफ हो जाए तब मैं आपको बताऊंगी। उनका अच्छा तुम बात बता लो। तो जब वो लड़कियां एक तरफ हुई तो वो कहने लगी जी कि उसकी वजह यह है कि मैंने जिस दिन से लंबे लंबे सजदे करने शुरू किए, मेरे चेहरे पर कील दाने थे वो सब खत्म हो गए हैं। अब बताइए, यानी वो लंबे लंबे सजदे जो कर रही है वो इसलिए कर रही है कि इससे जिस्म के कील दाने खत्म, चेहरे के कील दाने खत्म हो गए। और उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब इंसान लंबा सजदा करता है तो चेहरे पर ब्लड की जो फ्लो होती है वो बढ़ जाती है, और साफ जाहिर है कि जब ब्लड की फ्लो ज्यादा होगी तो चेहरा तरोताजा नजर आएगा। इसीलिए लंबा सजदा करने वालों के चेहरे वैसे ही तरोताजा नमाजी आदमियों के। आप दो हम उम्र लोगों को देख लें, उनमें से एक नमाजी बंदा हो, पांच वक्त की पाबंदी से नमाज पढ़ने वाला, और एक बेनमाजी हो, आपको दोनों की शक्लों में जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। दोनों के चेहरों को देख के आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये नमाजी है और ये नमाजी नहीं। क्यों? कि नमाजी बंदे के चेहरे पर सादगी होती है। हदीस पाक में तो इसको कहा कि जो आदमी पाबंदी से नमाज पढ़ता है उसके चेहरे पर सुलहा का नूर अता कर दिया जाता है। तो हदीस पाक में तो सुलहा का नूर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, और हकीकत यही है कि जब लंबा सजदा करता है तो ये जो ब्लड की जो आर्टरीज होती हैं वो शरियाने होती हैं, वो छोटी छोटी होती हैं स्किन के अंदर, तो उनको खूब फ्लडेड होके जो है ब्लड मिलता है, और उसकी वजह से चेहरे की स्किन जो होती है ना वो बहुत तरोताजा रहती है। जिस तरह गैर मुसलमानों ने मेडिटेशन के जरिए से जहनी सुकून हासिल करने की कोशिश कर ली, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नमाजों के जरिए से दुनिया के फायदे हासिल करते हैं। वैसे ये बात औरतों को अच्छी तरह समझाई जाए तो मुझे लगता है कि कॉस्मेटिक की खरीदारी काफी कम हो जाए, और कुछ औरतें तो पांच की जगह 10 नमाजें पढ़नी शुरू कर दें। और वाकई नमाजी औरत को आप देख लीजिए, कोई भी नमाजी औरत होगी ना तो बुढ़ापे तक उसके चेहरे पर ताजगी रहेगी। ये नूर होता है नमाज का। और जो बेनमाजी औरत हो उसकी जवानी की भी उम्र होगी तो चेहरे के ऊपर मर्दनी छाई हुई होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत है कि नेकी से इंसान के चेहरे पर भी उसके असरात मरतब होते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि भाई आज के काफिर लोगों ने मेडिटेशन के जरिए सुकून हासिल करने की कोशिश की, सुकून तो असल में मिलता है अल्लाह ताला की याद से। तो हम भी पाबंदी के साथ अल्लाह का जिक्र करें ताकि दिलों को सुकून मिल जाए। अब देखें, रोजाना हर आदमी सुकून की खातिर कुछ ना कुछ तो करता ही है, हर बंदा कुछ ना कुछ करेगा। आप गौर कीजिए, दफ्तर से जाएंगे ना तो परेशान होंगे, तो उसका एक तरीका ये, या तो घर आकर बीवी को सारा कुछ सुनाएंगे, दफ्तर में ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ। चुनाचे कुछ लोग होते हैं जो सारी कारगुजारी शाम को बीवी को सुनाते हैं, इस तरह से वो रिलैक्स हो जाते हैं। अच्छा, जो बीवी को जुबान से सुना नहीं सकते वो जरा जरा सी बात पे औखे हो जाते हैं, नाराज होना शुरू हो जाते हैं। प्रेशर दफ्तर का और रिलीज घर आके बच्चों पे हुआ, बच्चों को डांट पड़ रही है, बीवी को डांट पिला रहे हैं। अब ये भी असल में वो रिलैक्स हो रहे हैं, वो प्रेशर रिलीज हो रहा है। तो बजाय इसके कि हम घर कारगुजारी सुनाएं या घर आकर बच्चों के ऊपर चीखें बरसें, उससे ये बेहतर नहीं कि हम अल्लाह का जिक्र करें ताकि खुद खुद जहन का प्रेशर ही खत्म हो जाए, दिल का सुकून भी मिल जाएगा, अल्लाह ताला की याद का सवाब भी मिलेगा। इसको कहते हैं हम खुरमा व हम सवाब, कि तुम खजूरें भी खाओ और सवाब भी पा जाओ। तो इसलिए सुबह और शाम का ये जो जिक्र है इसके इंसान, इसके फायदे खुद इंसान को मिलते हैं। इसकी वजह से अल्लाह ताला दिल में सुकून अता फरमा देते हैं। ये तो था जिक्र के बारे में कुछ जनरल आपको बताना। अब रह गई बात कि मुराकबा क्या होता है। ये मुराकबा अरबी का लफ्ज है, कुरान पाक का लफ्ज है, फरतकिब, इन्नहुम मुर्तकिबून इस्तेमाल हुआ। इसका क्या मतलब, आप इंतजार कीजिए वो भी इंतजार करें। तो मुराकबे के कई मानी है, एक माना है इंतजार करना, किसका इंतजार करना, अल्लाह ताला की रहमत का इंतजार करना। मुराकबे का एक मतलब होता है निगरानी करना, निगरानी करना। चुनाचे सऊदी अरब आप जाएं तो पुलिस के जहां जहां केबन बने होते हैं वहां मुराकबा का लफ्ज लिखा होगा, मुराकबतुल अर्थ, मुराकबतुल फलां। तो हैरान होता है नया बंदा जाके कि यहाँ की पुलिस मुराकबे ही करती रहती है। तो वो बाद में पता चला कि वो मुराकबे ये नहीं करती, वो मुराकबे का मतलब निगरानी होता है। तो जैसे पुलिस चीजों की निगरानी करती है, सालिक इसी तरह जिक्र में बैठकर अपने दिल की निगरानी करता है कि दिल पे वस्वसे ना आए, दिल में बुरे आदात खसाइल ना आए, बल्कि दिल के अंदर अनवारात आए। तो हमारे मशायख ने इसके लिए मुराकबा का लफ्ज इस्तेमाल किया। मुराकबा का लफ्ज मतलब अल्लाह ताला की रहमत के इंतजार में बैठना। इसलिए नियत भी मुराकबे की यही की जाती है कि अल्लाह ताला की रहमत आ रही है, दिल में सिमा रही है, दिल की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है और दिल अल्लाह 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 कह रहा है। और इस तरह कुछ देर बैठने से अल्लाह ताला दिल को सुकून दे देते हैं। लिहाजा सुबह शाम इसको 15 मिनट आधा घंटा करना, इससे इंसान के अपने जो है जिंदगी के अंदर सुकून आ जाता है, जिंदगी बैलेंस हो जाती है, जहन पे कोई भी प्रेशर हो वो दूर हो जाता है, सुकून मिल जाता है। अल्लाह ताला हमें भी अपना जिक्र बार बार करने की तौफीक अता करे। एक लफ्ज है मुहासबा, मुहासबा का मतलब होता है अपना हिसाब किताब करना, जिसको कहते हैं ना जी नाप तोल करना, कि इंसान बैठ के जरा अपने आप को सोचे तोले कि मुझे क्या होना चाहिए था, मैं बना क्या फिरता हूं, इसको मुहासबा कहते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, हासिबू कबल अन तुहासबू, तुम अपना मुहासबा करो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। यानी क्यामत के दिन जो तुम्हारा हिसाब किताब होगा, इससे बेहतर नहीं कि तुम दुनिया में अपना मुहासबा खुद कर लो। मुहासबे से बंदा बड़ा डरता है, इसलिए हमारे मुल्क में जितनी हुकूमतें आती हैं वो एहतसाब सेल के नाम से बड़ा डराती हैं। एहतसाब के नाम से हर बंदा डरता है और डरते हुए एहतसाब करते भी नहीं कि आज इन्होंने कर लिया तो कल हमारी बारी ना कहीं आ जाए। तो नाम एहतसाब का इस्तेमाल करते हैं, करता कोई भी नहीं, चोर सारे जो होते हैं इल्ला माशाल्लाह, कोई बड़ा कोई छोटा, इसलिए करता कोई भी नहीं। ये एहतसाब तो करते थे सैयद उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, अपने नफ्स का भी मुहासबा और दूसरों का भी मुहासबा। अपने नफ्स का मुहासबा ऐसे कि एक मरतबा माल गनीमत आया और बहुत ज्यादा फतूहात की चीजें आई, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सारे लोगों को बुलाया कि भाई मिंबर के करीब हो जाओ। लोग करीब हो गए, आप मिंबर पे चढ़े और मिंबर पे चढ़ के कहने लगे कि उमर तो वही तो है कि जिसकी माँ खुश्क गोश्त चबाया करती थी, ये कह के नीचे उतर आए। अब लोग हैरान कि भाई सारे मजमे को इकट्ठा किया और ये फिक्र बोल के नीचे उतर आए। किसी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आपने ये क्या बात की, फरमाने लगे कि जब इतना माल गनीमत आया तो मेरे दिल के अंदर उजब पैदा हुआ, खुद पसंदी की कैफियत पैदा हुई कि देख उमर तेरे दौरे खिलाफत में क्या क्या फतूहात हो रही है। तो कहने लगे मैंने फौरन अपने नफ्स को जो है ना वो ठीक किया, लोगों को बुलाया और बुला के एक ऐसी बात की कि जो मेरे लिए जिल्लत का बायस थी कि अरबों में जो बहुत गरीब होता था ना वो गोश्त को खुश्क कर लेते थे और भूख के वक्त में खुश्क गोश्त को चबाया करते थे। इतना मुहासबा वो इतना किया करते थे, जरा सी दिल में कोई ऐसी शेखी की कैफियत पैदा हुई फौरन अपने आप को डोल दे देते थे। तो ये मुहासबा है, हम अपना मुहासबा करें। यूं समझिए कि जैसे ऑडिट होना हो ना किसी डिपार्टमेंट का, तो अकाउंटेंट उससे पहले अपनी सब फाइलें जो है ना वो मेंटेन करने में लगे हुए होते हैं। उनसे पूछो भाई आजकल दिन रात मेहनत करो, कहते हैं जी कुछ दिनों बाद ऑडिट है, तो उससे पहले पहले हमने अपना सब काम ठीक तो करना है ना। तो यही है कि हम रोजाना सुबह शाम अपने काम को ठीक कर लें, इससे पहले कि मौत के बाद फिर अल्लाह के हुजूर उसको नापतोल किया जाए, उसकी एडिटिंग की जाए। इसको मुहासबा कहते हैं। तो मुराकबा और मुहासबा ये दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, और इसका मुराद यही है कि इंसान अपने दिल में अल्लाह को याद करे ताकि क्यामत के दिन के हिसाब से महफूज हो जाए। अल्लाह ताला में बाकायदगी से जिक्र करने की तौफीक नसीब फरमा दे। थोड़ी देर मुराकबा कर लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए, सर को झुका लीजिए, दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे हट कट के अल्लाह ताला की याद में डूब जाइए। ये तसव्वुर कीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत आ रही है, दिल में सिमा रही है, दिल की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है, और दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह।